اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علام ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ گفتگو ہماری جاری تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جاہلیت جس روپ میں آئی، جس شکل میں آئی، وہ ایک خطرناک ترین شکل تھی. پہلی جاہلیت آشکار تھی کیونکہ شرک کے لبادے میں تھی، شرک کی صورت میں تھی. رسول خدا کے بعد جو جاہلیت آئی وہ دین کے لبادے میں تھی، دین کے لبادے میں تھی، اور دینی لبادے میں خلیفۃ المسلمین کہنے والے خود کو بتوں کا کاروبار کر رہے تھے. اپنے نماز جمعہ کے خطبوں میں رسول خدا کا نام نہیں لے رہے تھے، رسول خدا کی رسالت کی گواہی نہیں دے رہے تھے. بس دین کے جو ٹھیکیدار تھے، دین کے جو بڑے بنے ہوئے تھے، وہ قرآن کے حقیقی مفسر نہیں تھے. قرآن زنجیروں میں تھا، قرآن اسیر تھا. بس جو حاکم تھے وہ دین کو اسیر بنانے والے تھے، نہ کہ حاکم صرف فاسق ظالم اور شراب خور تھا، بلکہ حاکم دین کو اسیر بنانے والا تھا. انہوں نے کیا پلاننگ کی، کیا پروگرامنگ کی؟ منافقین نے کیا پروگرامنگ کی، بنو امیہ نے کیا پروگرامنگ کی؟ اس لحاظ سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیا پروگرامنگ ہوئی ان کی. بس اول جو نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بنو امیہ کا اسلام ظاہری تھا، ظاہری طور پہ وہ اسلام لے آئے اور کفر کو انہوں نے پوشیدہ کیا. مناسب فرصت کے انتظار میں تھے، یہ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا. امیر المومنین علی علیہ السلام بنو امیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ما اسلمو، وہ اسلام نہیں لائے تھے دل سے فتح مکہ کے وقت، ولیکن استسلم، لیکن وہ تسلیم ہوئے تھے بس، لیکن وہ تسلیم ہوئے تھے. وَأَسَرُّ الْكُفْرَ فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوا، انہوں نے کفر کو پوشیدہ کر کے رکھا تھا، بس انہوں نے ایک فرصت کا انتظار کیا. جو ہی انہیں مناسب فرصت ملی، سقیفہ نظر آیا، سقیفے میں امیدیں نظر آنے لگی، انہوں نے آشکار کرنا شروع کر دیا اپنے کفر کو. آوان اور انصار نظر آنے لگے تو انہوں نے اپنے کفر کو آشکار کرنا شروع کر دیا، بس یہ مسلمان نہیں ہوئے. ٹھیک، امام علی نے حاکم شام کو خط جو لکھا ہے، معاویہ ابن ابو سفیان کو جو خط لکھا ہے، اس میں بھی واضح ہے. جو امام خط میں بیان کر رہے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں آپ کے امام کہہ کہہ رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اسلام نہیں لایا، مجبوراً تم اسلام لائے تھے. تم سب نے دیکھا کہ عربوں کے بڑے بڑے لوگ فتح مکہ کے وقت رسول خدا کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور در حقیقت تم سب تنہا ہوئے، در حقیقت تم سب تنہا ہو گئے تھے. اپنی تنہائی کو بچانے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کیا، زبان سے ایمان کا اظہار کیا، بس زبان سے یہ اسلام. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ کہ بنو امیہ فتح مکہ کے زمانے تک کافر تھے، اور فتح مکہ کے بعد خالص منافق تھے، خالص منافق تھے. بس رسول خدا کی رحلت کے بعد انہوں نے اپنی جاہلیت کو تقویت دی، بڑھایا اپنی جاہلیت کو. انہوں نے حاکم وقت سے مدد حاصل کی، آہستہ آہستہ صاحب قدرت ہوتے گئے، گورنری سے خلیفہ بن گئے. گورنر پہلے بنے اور اس کے بعد کیا بنے؟ حاکم اسلام بن گئے، خلیفۃ المسلمین کہلانے لگے. खुद को कहलाने लगे रसूल खुदा के जानशीन, वो लोग जिनको रसूल खुदा ने भी दूर किया और खलीफ़ अव्वल ने भी दूर किया, लेकिन खलीफ़ दोम ने आके उन्हें ताकत फराहम की, तकवीत। ठीक, बस साहिब कुदरत होते गए। जब हाकिम हुए उन्होंने दीन और मकतब को मिटाना चाहा। बस कल हमने कहा था कि जो जिस खतरे की तरफ जनाब जहरा ने भी इशारा किया, कुरान करीम ने भी इशारा किया, इमाम अली ने भी इशारा किया, इमाम हसन ने भी इशारा किया, इमाम हुसैन ने भी इशारा किया, वो खतरा ये था कि हाकिम वो है जो दीन को असीर बनाने वाला है। हाकिम सिर्फ शराब खोर नहीं है, हाकिम सिर्फ फासिक नहीं है, हाकिम वो है जो मकतब को, इमामत को, कुरान को, दीन को असीर बनाना चाह रहा है। हमने मिसालें बयान की कि हकीकी मुफसर कुरान से इतने दिनों में 132 दिन मक्के में इमाम रहते हैं, 132 दिन में नाफे इब्ने अजरक सवाल किससे करने आता है, सवाल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, शागिर्द से सवाल कर रहा है, उस्ताद को आलिम नहीं समझ रहा, ये तन्हाई है इमाम। इमाम जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इमाम से कहा कि आप जवाब दें, तो नाफे बेअदब ने कहा कि आप खामोश हो, आप क्यों जवाब दे रहे हैं, मेरा आप कौन हैं। इमामत तन्हाई का शिकार थी, इमामत असीर हो चुकी थी। बस यहां ऑप्शन एक ही था, यहां की जो हालत थी उसमें इमाम का एक ही ऑप्शन था कि अब मैं हौजा बनाऊंगा तो शागिर्द कौन आएंगे, जो सवाल ही इमाम से मदीने से लेके कूफे तक या कूफे के रास्ते तक करबला तक कितने सवाल हुए इमाम से, दो। हौजा इमाम बनाते, हौजा तश्कील देते, कामयाब हो पाते नहीं। बस इमाम ने ऐसी प्रोग्रामिंग बनाई कि इमाम ने कहा शहादत ही रास्ता है, पाकीज़ा खून बहाना ही रास्ता। तभी आखिरी खिताब जो मक्के में किया, इमाम ने कहा कि जो लिखा अल्लाह का शौकीन है वो मेरे साथ आए। बस इमाम हुसैन की भी प्रोग्रामिंग थी, यहाँ से भी प्रोग्रामिंग थी मकतब को मिटाने के लिए। हम शुरू से बताते हैं कि मुनाफिकीन की जो खिलाफकारियाँ थी, मुनाफिकीन ने जो नुकसान दे दिया इस्लाम को, खिलाफकारियाँ जो कुरान करीम ने बताए हैं नमूने, हम वो बयान कर रहे हैं। पहला नमूना कुरान करीम ने जो बयान किया वो जंगे उहद। जंगे उहद मुनाफिकीन की खिलाफकारियों का एक नमूना है। जंगे उहद में हज़ार मुसलमान फौजियों ने शिरकत की, शिरकत करने के लिए निकले, मदीने से निकले, लेकिन रास्ते में अभी वहां पहुंचने से पहले 313 अफराद वापस लौट आए। बस मुनाफिकीन के जंगे उहद में दो ग्रोह थे, एक वो जो वापस लौट आया मदीने में, एक वो जो रसूल खुदा के साथ चल रहा था। कि आप सुनते हैं कि जंग के मौके पे रसूल खुदा का हुक्म नहीं माना, माले गनीमत पे टूट पड़े और इस्लाम को नुकसान हुआ, इसी वजह से जनाब हमजा भी शहीद हूं। बस जंग में जो शिरकत करने वाला गिरोह नहीं, जो जिन्होंने शिरकत नहीं की, रास्ते में पलट के आए 313 अफराद, उन्होंने किन का अहद तोड़ा? रसूल खुदा का अहद तोड़ा, कुरान करीम को वो समझते थे, कुरान करीम का अहद तोड़ा। कुरान करीम ने कहा था कि तुम ईमानी पूरी शरायत के साथ आओ तो कामयाबी तुम्हें मिलेगी। बस ईमानी शरायत अगर मुत्तकीन की पूरी हो, किसी भी ज़माने में हो, किसी भी जगह पे हो, वो कामयाब हों। ये जो कुरान कहता है बार बार, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, बेहतरीन अंजाम मुत्तकीन का, मुराद क़यामत नहीं है सिर्फ, हर ज़माने में हर तारीख में अगर मुत्तकीन की पूरी शरायत आ जाए वो कामयाब हों। वो क्या होंगे? कामयाब होंगे। बस कुरान के अहद को तोड़ा इन्होंने, रसूल खुदा के अहद को तोड़ा उन्होंने, ये कुरान समझते भी थे लेकिन मुआहदा तोड़ना भी जानते थे, मुआहदा इन्होंने तोड़ा। ये पहला गिरोह जो जंग में शिरकत जिन्होंने नहीं की, दूसरा गिरोह जिन्होंने जंग में शिरकत की, शिरकत करके नुकसान दिया, शिरकत करके नुकसान दिया। मुशरिकीन मक्का के साथ सियासी ताल्लुकात भी थे उनके, इत्तलाआती ताल्लुकात भी थे, इत्तलाआत भी फराहम कर रहे थे, इत्तलाआती रवाबित बरकरार रखे। कि कुरान करीम ने सूरह मायदा की आयत नंबर 52 ने उनकी इस कोशिश को बताया भी है और उनकी इस कोशिश को नाकाम होने का भी बयान किया। देखिएगा कुरान क्या कहता है, फतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, तुम देखते हो बाज मरीज लोग, कल्बी मरीज लोग जल्दी करते हैं कि मुशरिकीन को इत्तलात फराहम करें आपकी जंगी सूरत हाल की। युसारिऊना फीहिम, जल्दी उनसे रवाबित बरकरार रखते हैं, इत्तलाती रवाबित। यकूलूना, वो कहते क्या है, उनकी सोच क्या है, सोच जरा देखें। सोच ये थी जो कुरान करीम ने कही है, सोच ये थी कि मुशरिकीन जल्द ही निज़ाम इस्लामी को, निज़ाम आकलाना को ख़त्म कर देंगे, इस्लामी निज़ाम को ख़त्म कर देंगे, रसूल खुदा को कत्ल कर देंगे। रसूल खुदा कत्ल हो गए, इस्लामी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और वो दोबारा जाहिलियत वाला निज़ाम आ जाएगा। दोबारा हम तभी हमारे रवाबित किन से होने चाहिए, रवाबित हमारे कुफार के साथ होने चाहिए, सियासी भी और इत्तलाआती भी। बस ये रवाबित होंगे, हमें भी कुछ वजारतें मिलेंगी, हमें भी कोई मकाम मिलेगा, हमें भी कोई रुतबा मिलेगा, हमें भी कोई रुतबा मिलेगा। बस निज़ाम जाहिलियत वापस आएगा। कुरान का नक्शा अंतुसी बना दायरा, हमें खौफ है कि ऐसी मुसीबत मुसलमानों पे आएगी कि निज़ाम इस्लामी तबाह हो जाए। कुरान ने इसी आयत में सूरह मायदा की आयत नंबर 52 ने क्या कहा, फअसल्लाहु अय्याति बिलफत, नज़दीक है कि खुदा मुसलमानों को कामयाबी दे, नज़दीक है कि खुदा मुसलमानों को कामयाबी दे। फयुस्बिहु अला मा असर्रू फी अनफुसिहिम नादिमीन, बस वो बन जाएंगे पशेमान जो वो करते थे, जो वो चाहते थे उस पर भी पशेमान होंगे, जो वो करते थे उस पर भी पशेमान हो जाएंगे। हत्ता कि आपने सूरह आल इमरान को पढ़ा होगा, सूरह आल इमरान ने कहा कि हुआ क्या, जब जंगे ओहद के बाद नाकामी मिली, नाकामी ये नहीं थी कि निज़ाम ख़त्म हो जाए, निज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, ऐसी नाकामी नहीं मिली थी जंगे ओहद में, ये जहन में रखिएगा। जंगे ओहद में जो चाहते थे कि निज़ाम ख़त्म हो जाए वो ख़त्म नहीं हुआ था। जंगे ओहद के बाद एक ग्रोह एक्टिव हो गया था मदीने में जो मुसलमानों को डराता रहे कि तुम तो हार गए हो, तुम तो हार गए हो, तुम तो अब जीत नहीं सकते। वही आई, कुरान की आयतें आईं, जिन्होंने रसूल खुदा के फरामीन आए, जिन्हें जिन फरामीन ने, जिन आयात ने मुसलमानों को मजबूत किया और भरपूर तरीके से दोबारा तैयार हो। इन्हीं मदीने में भी एक्टिव थे, जंगों में भी इनके काम थे कि जंगों में भी मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, रवाब और इत्तलात भी फराहम की जाए, रवाबित भी बरकरार रखे मुशरिकीन से, ठीक। तीसरी खिलाफकारी कुरान करीम ने जो बयान की है वो जंगे तबूक। जंगे तबूक में मुनाफिकीन सरबराही में थे, सरदारी में थे अब्दुल्लाह इब्ने उबे के, अब्दुल्लाह इब्ने उबे के। बस पहला काम जंगे तबूक में ये था अब्दुल्लाह इब्ने उबे और उसके गिरोह का कि मुसलमानों के लश्कर को रूहानी लिहाज से कमज़ोर करें, मुसलमानों के लश्कर को रूहानी लिहाज से कमज़ोर किया जाए, वो नहीं कर पाए। दूसरा काम, दूसरा नक्शा जो बी ऑप्शन था वो कि रसूल खुदा को कत्ल किया जाए, जिसे आप सुनते हैं लैलतुल अक़ब, तारीख रात में रसूल खुदा को कत्ल करने की कोशिश। दोनों में नाकाम, दोनों में ये नाकाम हुए, इस नक्शे में भी कामयाब नहीं हो पाए। ये तीसरी खिलाफकारी थी। चौथी खिलाफकारी, मदीने में मुनाफिकीन मौजूद, मुसलमानों के अकीदे को खराब करने की कोशिश करते थे। एक ग्रोह था जो जंगों के लिहाज से डराता था, जंगों के लिहाज से कमज़ोर करता था कि आप जंग में शिरकत नहीं करेंगे। अब जंगे ओहद में जो नुकसान आया है, दोबारा ऐसा ही नुकसान दोबारा आएगा कि मुसलमान कमज़ोर हों। एक ग्रोह मदीने में मुनाफिकीन जो मौजूद थे वो मुसलमानों के अकीदे को ख़राब करने की कोशिश करते थे, रिसालत को कमज़ोर करने की कोशिश करते थे। मिसाल के तौर पर आपने सूरह हशर अगर पढ़ी है, सूरह हशर में कुरान करीम ने कहा है कि बनी करीज़ा एक कबीला था यहूदियों का, उन्होंने मुआहदा तोड़ा, उन्होंने रवाबित बरकरार कर लिए थे मुशरिकीन मक्का के साथ और इस्लाम के खिलाफ कोशिशें शुरू कर दी थी। हालांकि उनका मुआहदा मुसलमानों से था कि हम आपकी मदद करेंगे, आपके खिलाफ, आपके इस्लाम के खिलाफ कोई कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस्लामी हुकूमत के तहत ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन्होंने मुआहदा तोड़ा मुआहदा तोड़ा और मुशरिकीन से राबते रखे। बनी करीज़ा के लोग सीखने जाते थे मक्के की जानेब ताकि कैसे मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, कैसे मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए सीखने जाते थे, यानी ऐसे ऐसी चीज़ें सीखते थे, ऐसे करतब सीखते थे जो उन्हें काम आए मुसलमानों को कमज़ोर करने में अकीदे के लिहाज। जब बनी करीज़ा को निकाला गया, जला वतन किया गया बगैर जंग के, तो माल हाथ आया। जब बगैर जंग के माल हाथ आए उसे कुरान फई कहता है, माले फई। माले फई जब आया तो जो मुहाजरीन ने हिजरत की थी रसूल खुदा ने उनमें तकसीम किया। सिर्फ अंसार में तीन गरीब लोग थे जिनमें रसूल खुदा ने तकसीम किया, बाकी अंसार को कुछ नहीं मिला। अब मुनाफिकीन एक्टिव हो गए कि हमने जाके अंसार को कहना है कि रसूल खुदा ने सही फैसला नहीं किया, हालांकि अंसार से रसूल खुदा ने मशवरा किया था कि आप अमीर हैं, आपके पास घर है, जमीनें हैं। मुहाजरीन ने जो हिजरत की है ना, उनके पास घर है ना उनके पास जमीन है, तो उनकी मदद वो लायक हैं ज्यादा, तो आप अपना हिस्सा माफ कर दें, ये हिस्सा हम किन में तकसीम करते हैं, मुहाजरीन में तकसीम करते हैं। लेकिन इन्होंने बहकाने की कोशिश की, रसूल खुदा की रिसालत को कमजोर करना चाहा, रसूल खुदा की हाकिमियत को कमजोर करना चाहा। कुरान करीम ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 60 ने इशारा दिया। कुरान करीम कहता है लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरज़ुन वल्मुर्जिफून फिल मदीना। बस ये मुनाफिकीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो खुदा आपको उन पर मुसल्लत कर देगा। क्या है उनकी? गलत अफवाहें फैलाना और गलत नजरियात की तरवीज करना। गलत नजरियात क्या है? कि रसूल खुदा ने माज अल्लाह गलत फैसला किया। वो जो माले फैर आया हाथ में रसूल खुदा के, वो सिर्फ और सिर्फ क्यों मुहाजरीन को दिया और तीन गरीब अंसार को दिया, बाकियों में क्यों नहीं तकसीम किया? ठीक, बस इस लिहाज से ये चौथी खिलाफकारी, पांचवी खिलाफकारी। ये मुनाफिकीन यहूदियों से मिलते थे, यहूदियों को और अपने जैसे दूसरे मुनाफिकीन को कहते थे कि तिजारती ताल्लुक उन मुसलमानों से तोड़ दो, ख़त्म कर दो जो मुसलमान रसूल खुदा के बहुत ज़्यादा करीब, जो रसूल खुदा के बहुत ज़्यादा करीब हैं उनसे तिजारती ताल्लुक ख़त्म कर दो, उनसे तिजारत ना करो, उनसे कोई चीज़ खरीदो ना, जब तक वो रसूल खुदा से जुदा ना हो जाएं तुम लोग उनसे कोई तिजारती ताल्लुक, यानी क्या? इक्तसादी पाबंदी, इक्तसादी पाबंदी। कि सूरह मुनाफिकून ने इसकी तरफ इशारा किया कि इक्तसादी पाबंदी, इक्तसादी लिहाज से मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, वो मुसलमान जो रसूल खुदा के बहुत ज़्यादा करीब। हुमुल्लज़ीन यकूलून, ये वो मुनाफिकीन हैं जो कहते हैं ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह। यहाँ ला तुनफिकू में माना इन्फाक नहीं है, ला तुनफिकू यानी ला तुक्सिदु, इक्तसाद ना करो। यहाँ तुनफिकू भी माना इन्फाक नहीं है, यानी इक्तसादी तिजारती ताल्लुकात कायम ना करो, तिजारती ताल्लुकात ना करो उन लोगों से जो रसूल खुदा के करीब हैं। मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यनफज़ू, यहां तक के वो जुदा हो जाए रसूल खुदा से, जब जुदा हो जाए ताल्लुकात बरकरार रखो। खुदा ने उसी सूरह में, सूरह मुनाफिकून उसी आयत में उनको जवाब क्या दिया? जवाब ये दिया कि मुनाफिकीन सिर्फ जाहिर को देखते हैं, मुनाफिकीन बातिन शनास नहीं, अंधे हैं। क्या कहा? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज, खुदा के खजाने हैं आसमान और जमीन। वला किन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफिकीन नहीं देखते मलकूत। खुदा के पास आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं, अगर उनसे तुम तिजारत नहीं करोगे तो खुदा उन्हें भूखा नहीं मारेगा, खुदा उन्हें अता करेगा अपने ख़जानों से, लेकिन ये लोग नहीं जानते। बस ये पांचवी खिलाफकारी। छठी खिलाफकारी, मुसलमानों की हैसियत को कमज़ोर करार देना, उन्हें जलील समझना। वो जुबानों से कहते थे, लफ्ज़ मुसलमान नहीं कहते थे, जलील कहते थे कि कमज़ोर किया जाए, अल्फाज भी गलत इस्तेमाल किए जाते थे मुसलमानों के लिए, जलील है ना, बहुत सारे ऐसे आप देखें कि लीडर हैं जो बाहर बाहर के वो सख्त रवैया रखते हैं मुसलमानों के खिलाफ। आप उनकी ज़ुबान को देख लें, वो अल्फाज ऐसे मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। इसी तरह इनकी ये कोशिश थी कि मुसलमानों को जलील कहा जाए, ज़ुबानों से अल्फाज बोले जाएं ताकि मुसलमान क्या हों, कमज़ोर। कुरान करीम ने इशारा दिया है इसकी तरफ, क्या कहते हैं ज़रा देखिएगा। यकुलूना, सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 8, यकुलूना लइर रजअना इलल मदीना, कहते हैं कि अगर हम मदीने वापस गए तो हम इज्जत वाले मुनाफिकीन जिल्लत वालों को निकाल देंगे, जलीलों को निकाल देंगे, जलीलों को निकाल देंगे। बस मुसलमान जलील है, जुबानों से मुसलमानों को जलील कहा करते थे। खुदावंद आलम ने क्या जवाब दिया उसी आयत में, जवाब दिया वलिल्लाहिल इज्जतो वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। मुनाफिक बातिन को नहीं जानते, मुनाफिक रूह के लिहाज से अंधे हैं, रूहानी लिहाज से अंधे हैं। इज्जत खुदा, उसके रसूल और मोमिनीन के लिए, मोमिनीन के लिए है। सातवीं खिलाफकारी, झूठ गढ़ना, झूठ गढ़ना, तोहमतें गढ़ना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पे तोहमत लगाई गई, जो सूरह नूर की आयत नंबर 11 ने कही कि सफर पे गए, साथ बीवी भी गई, रसूल खुदा का काफिला गया, वो कहीं बाहर निकली थी, खेमे से बाहर निकली थी, खेमा चला, रास्ते में पता चला कि बीवी तो आई नहीं, ऊंट जो उठाया गया जिस ऊंट पे वो सवारी नहीं थी, वापस वो काफिला पलटा और दोबारा रसूल खुदा की बीवी को काफिले में शामिल किया और ले आए। उस दौरान तोहमत लग गई रसूल खुदा की बीवी पे, तोहमत लगाने वाले मुनाफिकीन थे कि कुरान करीम ने सूरह नूर की आयत नंबर 11 ने क्या कहा, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्के उसबतुम मिनकुम, एक ग्रोह है जो आया है तेरी बीवी पे तोहमत लगाने के साथ, ए रसूल खुदा तुम हाकिम हो, तुमने ऐसे हुकूमत करनी है, ऐसे तुमने मामला हल करना है कि गुस्सा तुम पे, गजब तुम पे गालिब ना आए, तुम पे गजब गालिब ना आए। क्यों? क्योंकि तुम अब हाकिम हो, अब हाकिम का रवैया और होना चाहिए। हाकिम अगरचे तोहमत तुम्हारी बीवी के हवाले से है, लेकिन तुम इसे हैंडल करो सही तौर पे, इसे संभालो, मामले को हल करो खुश उसलूबी से। मिनहुम वलहू अज़ाबुन अज़ीम, लेकिन इनके लिए जो तोहमत पर बाकी हैं, तोबा करते हैं उन्हें माफ कर दो, जो तोहमत पे बाकी उनके लिए दर्दनाक अजाब है, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बस तोहमत को मशहूर किया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को बदनाम करने की कोशिश की, ये खिलाफकारी। अब ये सात खिलाफकारियां हमारी कोशिश थी, अब जितनी हमारे अंदर हिम्मत है, मुमकिन है ज्यादा हो, मुमकिन है ज्यादा हो, आप पे हम रख लेते हैं कि आप ढूंढें खिलाफकारियां, कितनी इन्होंने खिलाफकारियां की। अब सवाल ये है कि जब ये खिलाफकारियां कर रहे थे, एक्टिव थे रसूल खुदा के दौर में, कुरान करीम ने भी इशारा किया, बस रसूल खुदा के दौर में जब ये थे, तीन हालतों से मामला खारिज नहीं है। अब तीन हालतें हो सकती हैं, हम तीन हालतें बताते हैं, आप खुद मुअय्यन करिएगा कि इन तीन हालतों में से कौन सी एक हालत बाकी रह जाती है। पहली हालत, रसूल खुदा की रहलत के बाद ये सारे मुनाफिकीन मर गए, खत्म हो गए, ऐसा हुआ नहीं हुआ। दूसरी, सब ने तोबा कर ली, सब बन गए अबू जर और सलमान जैसे, ये दूसरी भी खत्म नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तीसरी, हुकूमत वक्त से जुड़ गए, आहिस्ता आहिस्ता कुव्वत में आए, फुर्सत के मुंतजर थे कि हुकूमत रसूल खुदा की रहलत हो, रसूल खुदा की कागज़ और कलम मांगने की बातों को रद्द किया जाए, रसूल खुदा की सकलैन के हवाले से गुफ्तगू को रद्द किया जाए, एक मुनासिब फुर्सत के मौके के इंतज़ार में थे। इधर जनाजा अभी निकल रहा हो, उधर से पूरी प्लानिंग जारी हो, बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कुव्वत में आए, आहिस्ता आहिस्ता कुव्वत में आए, बस पहली हालत काबिले कबूल नहीं, ना ही दूसरी हालत काबिले कबूल है, तीसरी हालत रह जाती है कि फतह मक्का के वक्त जिन्होंने मजबूरन इस्लाम कबूल किया, मजबूरन इस्लाम कबूल किया, अब वो एक्टिव हो हुए कि आए उन हुकूमतों में घुसें, उन हुकूमतों से मदद हासिल करें, आहिस्ता आहिस्ता तकवियत हासिल करें। सबसे पहले 20-40 साल हाकिम शाम की, मुआविया इब्ने अबू सुफियान की 40 साल हुकूमत, 40 साल हुकूमत में से 20 साल गवर्नरी की है और 20 साल किसी है, 20 साल खलीफतुल मुस्लिमीन के लिहाज के सुलह इमाम हसन जब हुआ तो 20 साल वो खलीफतुल मुस्लिमीन हुआ, उससे 20 साल पहले क्या था, गवर्नर। ये गवर्नर खलीफे दोवम ने आके उर्दुन का पहले खलीफा बनाया और उसके भाई को शाम का खलीफा, उसका भाई फौरन मर गया, उसके बाद शाम का गवर्नर बना मुआविया इब्ने अबू सुफियान, शाम का गवर्नर बना। ठीक, अब जी ये शाम का गवर्नर बना, अब आहिस्ता आहिस्ता तकवियत कैसे हासिल की, गौर से सुनिएगा। पहला सवाल आपने जो सोचना है वो ये है, कैसे शाम का गवर्नर बना, ताल्लुकात मजबूत किए खुलफा के साथ। दूसरा, क्यों उसने शाम का इंतखाब किया, शाम का इंतखाब भी एक मुनासिब फुर्सत की तैयारी थी, मुनासिब फुर्सत के वो मुंतजर थे। शाम में अहल बैत के हवाले से इल्म नहीं था, भला आप सुनते नहीं कि अली और मस्जिद, क्या काम अली और मस्जिद का कि अली मस्जिद में माज अल्लाह शहीद हो जाए, ये सुनते नहीं जुमला। एक शामी शख्स, कल हमने कहा कि शाम के बाजार से जब ये लुटा हुआ काफिला चला, एक शामी शख्स, बूढ़ा शख्स आया है इमाम जैन अलादीन के पास, कहा तुम बागी गिरो। इमाम ने कहा बागी गिरो, तुमने कुरान पढ़ा है, आयत मवद्दत पढ़ी है, आयत खुम्स पढ़ी है, आयत ततहीर पढ़ी है, काके पढ़ी है, काके जिल कुर्बा से मुराद, मवद्दत फिल कुर्बा से मुराद कौन है, काके नहीं मालूम कौन है, कहा कि वो हम हैं, कहा अहल बैत से मुराद आयत ततहीर में कौन है, कहा कि वो हम हैं। वो शख्स कहता गया कि हम तो धोखे में गिरफ्तार थे, हम तो धोखे में आ गए, हाकिम के धोखे में आ गए। शाम इलाके का इंतखाब ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि शाम का इंतखाब किया जाए, बस शाम का इंतखाब। क्यों, उसने ताकत हासिल करने के बाद रूम से ताल्लुकात रखे, रूम यानी इस वक्त का इसराइल, रूम को दुश्मनी थी इस्लाम से क्योंकि वो ताकत खो बैठा था, गुलबत रूम, मगलूब हो चुका था रूम। ईसाइयों से ताल्लुक क्यों बनाए, सर जॉन इब्ने मंसूर बेतुल माल का भी मुशीर था, फौज का भी मुशीर था, दो काम थे उसके कि फौज कितना जुल्म करे और माल कैसे इकट्ठा किया जाए। यह सर जॉन इब्ने मंसूर का ही मशवरा था, कौन सा, कि हाकिम शाम बुत बनाए और बुत बना के हिंदुस्तान भेजे और महंगे दामों में भेजे बेचे और ये कश्ती के जरिए जाएं, कश्ती के जरिए जाएं, यानी हाकिम शाम बुतों का कारोबार कर रहा है, बुतों का कारोबार कर रहा है और नमाज जुमा भी पढ़ा रहा है। खलीफतुल मुस्लिमीन जिसकी जिम्मेदारी है तौहीद को राइज करना, तौहीद को आम करना, वो क्या कर रहा है, शिर्क को आम कर रहा है। जो अहकामात सादर हो रहे थे करबला के हवाले से, लश्कर अगरचे कूफे से आया था, लश्कर शाम से नहीं आता, अगर शाम से लश्कर आता 2 महीने लग जाते तकरीबन, लेकिन 2 दिन में कासिद पहुंचता था, फौज का चलना तो वो 2 महीने लगते, लेकिन कासिद एक शख्स आता था जो सर जॉन का पैगाम लेके, सर जॉन इब्ने मंसूर का पैगाम लेके आता था कि कितनी सख्ती की जाए, पानी कब बंद किया जाए, कब कत्ल किया जाए, तीरों की बरसात की जाए, किसी पे रहम ना किया जाए, बच्चों के सर काटे जाएं, बच्चों के गले काटे जाएं, सब जितनी जितना जुल्म बढ़ाया जाए, वो कौन निकाल रहे थे अपनी, ये कौन अपने गुस्से को और गजब को निकाल रहा था इस्लाम पे, ये वो सर जॉन इब्ने मंसूर। सरजोन इब्ने मंसूर है। बस क्यों उसने ताकत हासिल करने के बाद ईसाइयों से ताल्लुक कायम किए, रोम से ताल्लुकात कायम की? उसके सारे वज़रा बनू उमैया के क्यों थे, बाकियों के क्यों नहीं थे? सारे वज़रा बनू उमैया के थे, ये आपको जहन में है, सारे वज़रा, यानी भरपूर एक प्लानिंग थी, भरपूर एक प्लानिंग थी। क्यों उसने अपनी फौज में खूनखार जाहिल अरबों को शामिल किया और मुंह मांगी कीमत दी, मुंह मांगी कीमत दी? हुरमला जैसा खूनखार अरब क्यों शामिल किया गया फौज में, जो हर जुल्म को वो करे, एक शिशमाही बच्चा प्यासा लाया जाए उसके सामने, वो घबराए ना और से शोभा तीर उसके गले पे मार? क्यों खूनखार अरब शामिल किए गए? ये सर जॉन इब्ने मंसूर का मशवरा था कि खूनखार अरब शामिल किए जाएं, खूनखार अरबों को मुंह मांगे पैसे दिए जाएं, हर जुल्म जो करना चाहते हैं वो करें, भड़ास निकाली जाए इस्लाम के खिलाफ। बस ये पूरी तैयारी थी, बस अहम मकाम, अहम अपनी फौज में खूनखार जाहिल अरबों को अहम मकामात दिए गए। बस इन सवालात का जवाब ये है कि ये सब उनकी 40 बरस की, ये 40 बरस जो मुआविया इब्ने अबू सुफियान ने प्लानिंग की है, तकवियत हासिल की है इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम को असीर बनाने के लिए। हमने कल नहीं कहा था कि जूं ही आज़ान सुनता और अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनता, कहता क्या लोगों से कि हम हुकूमत तभी कर सकते हैं जब अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह को ख़त्म कर लें, हम तभी हुकूमत कर सकते हैं। अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों इमाम सज्जाद से पूछा गया कि कामयाब कौन हुआ? कहा कि ज़रा नमाज का वक्त होने दो, आज़ान और अकामत होने दो, वहाँ मुअज्जिन कहेगा अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, तब मैं पूछूंगा कि कामयाब कौन हुआ, हम या तुम? रोज़ क्यों यजीद मिंबर पे बैठ के कहता था लाएबत बनू हाशिम, बनू हाशिम ने ढोंग रचा नबूवत का, ना ही कोई मलक आया, ना कोई फरिश्ता आया, ना कोई कुरान आया, ना कोई वही नाजल हुई, माज़ अल्लाह। अब दीन को खतरा था, अब दीन असीर हो चुका था, अब दीन असीर हो चुका था, अब सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए था, पाकीज़ा खून बहाना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तभी बार बार मशवरा देने वाले बहुत आए, यमन चले जाएं, मक्के में रहें, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, चंद महीने आप रूपोश हो जाएं। कहा नहीं, अभी मैंने रसूल खुदा को ख्वाब में देखा है, आए हैं और कहें कहा है कि हुसैन इराक की तरफ रवाना हो जाए, खुदा तुम्हें कत्ल होता हुआ दे, इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, खुदा तुम्हें कत्ल होता हुआ देखना चाहता है। पूरी प्लानिंग दोनों ग्रोहों की जानिब से, वही के मुताबिक इमाम हुसैन चल रहे थे, रसूल खुदा से ताल्लुक था, करबला के करीब पहुंचे हैं, टेक लगाई हुई है इमाम हुसैन ने, तलवार पे टेक लगाई हुई है, आंख जू ही बंद हुई है, घोड़े सवार को देखा है, करीब आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुबारक हो, ये ग्रोह अपने मंजिल की तरफ चल रहा है, मंजिल की तरफ पहुंच रहा है, आंख खुली है, फौरन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा है। जनाब अली अकबर आए, कहा कि बाबा क्या हुआ? इमाम ने बताया कि मैंने रसूल खुदा को देखा कि रसूल खुदा करीब आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुबारक हो, ये कौम अपने मकसद की मौत की जानिब बढ़ रही है। कहा कि बाबा हम हक पे नहीं हैं। कहा कि क्यों नहीं? कहा कि फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मौत हम पे आए हम मौत पे जाएं। पूरी तैयारी। कल हमने कहा था बशीर इब्ने अमर हज़रमी कितना खुश नसीब था, खबर मिली है बेटा जिंदान में चला गया, इमाम ने कहा चले जाओ, कहा कि अगर मैं ये अब चला गया तो ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी होगी, दुआ करूंगा कि बयाबान के दरिंदे मुझे चीर फाड़ दें। ऐसी टीम शामिल की है, ऐसे लोग शामिल किए हैं जो चाहते ही नहीं इमाम के बगैर अमान नामा हासिल हो, इमाम के बगैर जिंदगी हासिल हो, इमाम के बगैर पानी पिए, इमाम के बगैर पानी पीना नहीं चाहते थे। दोनों ग्रोह प्रोग्रामिंग के साथ चल रहे थे, प्रोग्रामिंग के साथ। बस रोम के मसीही सर जॉन इब्ने मंसूर अपनी तरफ, उसको अपनी तरफ माइल किया ताकि ईसाइयों से भी कुदरत हासिल की जाए, ईसाइयों से सीखा जाए कि कैसे बैतुल माल को पुर किया जाता है, ताकि खूनखार अरब शामिल करने हैं, खूनखार अरबों को मुंह मांगी कीमत देनी है, मुंह मांगी कीमत दे के उनसे बदतरीन काम करवाना है, शिशमाही अली असगर को कत्ल करवाना है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई आसान काम क्या कि एक प्यासा बच्चा कोई ला रहा हो सामने और से शोभा तीर मारा जाए उसे। एक पूरी प्लानिंग है, पूरी तैयारी है। जाहिल अरबों को रसूल खुदा ने तासुब से निकाला, बनू उमैया ने तासुब में दोबारा डाला। रसूल खुदा ने तासुब से निकाला था, भाई भाई करार दिया सबको, सब मुसलमानों को भाई भाई करार दिया, आके दोबारा बनू उमैया ने तासुब परस बनाया, तासुब परस, जात परस बनाया, जात परस बनाया। फरेब वाली सियासत जो कुरान ने हराम की थी, इन्होंने आके हलाल की, इन्होंने आके हलाल की। जालिम हाकिम के खिलाफ कुरान ने लड़ने का हुक्म दिया है, इन्होंने जालिम हाकिम को कबूल कराया, मुआशरे जालिम हाकिम को कबूल कराया। तभी इमाम ने कहा अला तरौना अन्नल हक ला युमल बिही, देखते नहीं तुम कि हक पे अमल नहीं हो रहा, बातिल से रोका नहीं जा रहा, बातिल से रोका नहीं जा रहा। बस 20 साल पहले इमाम बाहर के शागिर्दों की तरबियत कर रहे हैं, 40 साल पहले इमाम अहल बैत में तरबियत कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं ताकि पाकीज़ा खून दिया जाए, मकतब जिंदा किया जाए। अब मदरसे बनाने का वक्त नहीं है, अब खुतबे देने का वक्त नहीं है, अब तकरीर करने का वक्त नहीं, तकरीर करने का वक्त नहीं। इमाम हज कर सकते थे लेकिन अय्याम हज में हज नहीं किया, उम्रा किया ताकि उम्मत को होश दिलाएं, उम्मत को होश दिलाएं कि हालात बड़े ख़तरनाक। सर जॉन इब्ने मंसूर ने मशवरा दिया कि जहाँ से मुमकिन है माल हासिल हो सके हासिल करो। मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको, दियत का हुक्म के कातिल से दियत ली जाए और मकतूल के वरसा को दी जाए। हाकिम शाम ने आके क्या किया, हाकिम शाम ने एक कानून बनाया कि दियत जो मिलेगी आधा इस्टेट लेगी, आधा बैतुल माल में जाएगा, आधा वरसा को दिया जाएगा, मकतूल के वरसा को दिया जाएगा। यानी आप देखें कि कैसे कैसे मंसूबे बनाए गए ताकि माल इकट्ठा किया जाए और इस्लाम को ख़त्म किया जाए, इस्लाम को नुकसान दिया जाए। आखिरी खिताब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया मक्के का, उसमें अहम नुकात ये हैं, दीन खतरे में है, दीन खतरे में है, दीन की निजात के लिए कल मैं चलूंगा और मेरे साथ चलने वाला भी लिखा अल्लाह का शौकीन हो, जिसका वतन वतन इरफानी हो, जिसका वतन मुवत्तिनन अला लिका इल्ला मुवत्तिनन। ये जो आप आइमा ने कहा है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, इसकी तफसीर इमाम हुसैन ने की है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान यानी हुब्बुल लिका इल्ला मिनल ईमान। हर एक का वतन क्या है, न शाम है न मिस्र है, लिखा अल्लाह, लिखा अल्लाह है, ठीक। बस इमाम हुसैन ना अपने साथ आबिदों को लेके चले, न जाहिदों को लेके चले, बल्कि लिखा अल्लाह के शौकीन को लेके चले, लिखा अल्लाह के शौकीन को लेके चले। ऐसे लिखा अल्लाह जो पूरी बनू उमैया की प्लानिंग को नाबूद कर दे, और ऐसा ही हुआ है। जो कासिद खबर देने गया है उसके चेहरे से तासुरात नाकामी के जाहिर हो रहे हैं कि यजीद ने पूछा है कि खुशी की खबर दे रहे हो कि हम जीत गए हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे के तासुरात उतरे हुए हैं। कहा कि हमने बड़ी कोशिश की इन हजरात को मायूस किया जाए, ये हजरात मायूस नहीं हुए। करबला के बाद एक नया शोशा बना, वो क्या था, वो ये था कि इमाम हुसैन को खुदा ने कत्ल कर दिया, माजल कि इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उस खुदा की तारीफ है सारी जिसने तुम्हें कत्ल किया, जिसने तुम्हें रुस्वा किया। जनाब ज़ैनब ने कहा माराई, तमाम तारीफ खुदा के लिए जिसने हमें नबूवत मुहम्मदी से करामत बख्शी, हमने जमाल खुदा के अलावा कुछ नहीं देखा। खुदा ने नहीं कत्ल किया, तुमने हमें मजलूमाना कत्ल किया। खुदा मौत देता है, कत्ल नहीं करता। कत्ल तुमने किया, मौत खुदा ने दी। ये बड़ा फर्क है कत्ल और मौत में। आके इन्होंने कुरान को जिंदा रखा, इस्लाम को जिंदा रखा, इस्लाम को जिंदा रखा। जरूरी है कि करामत इनकी समझी जाए। सबसे बड़ी मुसीबत किसी के लिए करामत, करामत सबसे बड़ी मुसीबत। जिसकी जितनी बड़ी करामत होगी उतनी बड़ी मुसीबत होगी। बस करबला की दुश्वारी की इल्लत के दुश्वार क्यों थी? क्योंकि करीम लोग गुजर रहे थे कूफे के बाजार से, शाम के बाजार से, करामत वाले, इतने करामत वाले कि ऐसे करामत वाले अहल बैत अलैहिस्सलाम जैसा रुए ज़मीन पे कोई नहीं आया, रुए ज़मीन पे कोई नहीं आया। बस जितनी ज़्यादा करामत होगी उतनी ज़्यादा मुसीबत हो। इल्लत दुश्वारी करामत। जंगों में शिरकत करने से बहुत सारे लोग आवारा होते हैं, बहुत सारे लोग अपने वतन से दूर हो, बहुत सारे लोग। दो किस्मों के लोग होते हैं, एक वो लोग जो शहरों में हैं, अपने घरों में ज़िंदगी गुजारते हैं, दूसरे वो लोग जो बद्दू हैं, सहरा नशीन हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हों। जो गरीबुल वतन हों, आवारा हों, आपको क्या लगता है कि जो सहरा नशीन हों उनके लिए आसान होगा या नहीं होगा कि गरीबुल वतन हों, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हों, आवारा हों? उन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दुश्वारी होती है जो लोग एक जगह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक जगह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। जो एक जगह करीमाना ज़िंदगी गुजार रहा हो, वो कूफा भी जा रहा हो, शाम भी जा रहा हो, न पानी मुयस्सर हो, न खाना मुयस्सर हो, न सवारी सही मुयस्सर हो, वो सफ़र कर रहा हो, तीरों की बरसात हो, बच्चे खेमों से गुम हो, नमाज शब भी पढ़ रहा हो, उस पर कितनी दुश्वारी होगी वो ही समझ सकता है, वो ही जान सकता है। एक फैमिली है, एक फैमिली है कि उस फैमिली का सिस्टम या प्रोग्राम ये है कि भाई औरत हमारी खरीदारी करने नहीं जाएगी, मर्द खरीदारी करके आएंगे। कभी ऐसा मौका आए, शरी तौर पे हम नहीं कह रहे कि शरी तौर पे कोई ममनू है कि औरत खरीदारी ना करे, हम शरी तौर पे बात नहीं करें, हम कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम है कि औरत हमारी खरीदारी करने नहीं जाएगी, हमारी खरीदारी कौन करके आएगा? हमारे मर्द करके आएंगे। एक उसूल है एक फैमिली में। कभी ऐसा मौका आ जाए कि उनके मर्द खरीदारी ना कर सके, वो उनके लिए मुसीबत हो जाती है कि औरत हमारी जा रही, औरत हमारी जा रही खरीदारी करने जा रही, उनके लिए बड़ी मुसीबत होती है कि कैसे हो सकता है कि हमारी ये बच्ची या हमारी औरत जो है खरीदारी करने जाए। अहल बैत अलैहिस्सलाम, ज़ैनब सलाम अलैहा कभी बाजार में खरीदारी करने नहीं निकली थी। इस्लाम की खातिर अब उन्हें कहाँ से गुजारा जा रहा है, अब कहाँ से गुजर रही हैं? कितनी बाहिम्मत खातून, वो कूफे के बाजार से भी गुजर रही हैं, वो शाम के बाजार से भी गुजर रही, शाम के बाजार से भी गुजर रही हैं। एक पूरी फैमिली जिनकी औरतें भी बाहर जाती हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इमाम अली ने कूफे के बाजार में इमाम गए, करीम थे इमाम, और करामत रसूल खुदा के बाद सबसे ज़्यादा इमाम अली की है। कूफे के बाजार में गए, पूरा बाजार औरतों से भरा हुआ देखा, एक चंद मर्दों को बुला के कहा कि कहाँ तुम्हारी गैरत चली गई कि सारी औरतें तुम्हारी खरीदारी कर रही हैं, कोई मर्द नज़र नहीं आ रहा, कोई मर्द नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि करीम हैं, करीम हैं तो उनको दुश्वार लग रहा है, उनको दुश्वार लग रहा है। जितनी हमारे अंदर अजमत और करामत अहल बैत बढ़ती जाएगी, उतना ही मुसीबत को दर करना मुश्किल तर होता जाएगा कि इतनी बड़ी मुसीबत। हम जितना अहल बैत अलैहिस्सलाम के मकाम को दरक करेंगे उतना ही दुश्वार होता जाएगा हमारे लिए। इमाम सज्जाद का चाहने वाला था अबू खालिद काबली, अबू खालिद काबली इमाम सज्जाद के पास मिलने गया, इमाम के घर में गया, देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ, बड़ा ही ताज्जुब में पड़ा, ताज्जुब में पड़ गया कि कैसे दरवाज़ा खुला हुआ है इमाम ज़ैन अलाब्दीन अलैहिस्सलाम। इमाम को आवाज़ दी, इजाज़त तलब की, इमाम ने एक कमरा खाली कराया, उसे बिठाया और कहा अबू खालिद काबली ने कि आज मैं ताज्जुब में पड़ गया हूँ कि आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ। कहा कि एक कनीज़ है जो लाउबाली है, उसे मालूम नहीं हुआ और वो खोल के चली गई, वगरना रसूल खुदा की बेटियाँ कभी घरों के दरवाज़े नहीं खोलती, न खोल के रखती हैं ताकि गली वाले मुतवज्जे हों। अंदाज़ा लगाएं रसूल खुदा की बेटियाँ आप कहाँ घूम रही हैं, अब कूफे में भी घूम रही हैं, अब शाम के बाज़ार में भी घूम रही हैं। क्यों इमाम सज्जाद ने 3 दफ़ा शाम का नाम लिया कि मुसीबत ज़्यादा कहाँ आई, कहा कि शाम अशाम अशाम। यहिया माजनी कहते हैं कि एक शब में हमसाया था, कूफे में हमसाया था इमाम अली का, एक शब मैंने देखा कि ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जलाल व अज़मत के साथ घर से निकल रही हैं शब में, रात में। आगे इमाम अली हैं, दाएं जानेब इमाम हसन हैं, बाएं जानेब इमाम हुसैन, और कब्रे जनाब जहरा के कब्र पे जा रही हैं, वहाँ एक चिराग जल रहा था। इमाम हसन फौरन आगे बढ़े, चिराग को बुझाया, उसके बाद अंधेरे में ये हस्ती यानी जनाब ज़ैनब अपनी माँ से राज़ो न्याज करने लगे। ये करामत है, ये अहल बैत अलैहिस्सलाम की अजमत व करामत। यहिया माजनी कहते हैं कि मैंने जब सुना कि यही वो ज़ैनब है जो कूफे के बाज़ार से गुजरी हैं और शाम के बाज़ार से गुजरी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार था, क्योंकि न दाईं जानेब इमाम हसन थे, न बाईं जानेब इमाम हुसैन, न सामने इमाम अली थे, सामने दो सर रखे गए थे जनाब ज़ैनब के सामने, इमाम हुसैन का और जनाब अब्बास। अजमत अहल बैत, करामत अहल बैत जितनी हम दरक करते जाएंगे उतना ही देखेंगे कि दुश्वारी और मुसीबत उन पे कितनी अजीम। क्या पढ़ते हैं आप, लकद अजमतिल मुसीबा, ए मोहम्मद और आले मोहम्मद, ए करबला वालों जो मुसीबत तुम पर आई वो किसी पर नहीं आई, क्यों, क्योंकि करामत ज़्यादा है तुम्हारी, क्योंकि मकाम तुम्हारा ज़्यादा है। बस ये दो दर्स रखे कि हम समझें, इस करबला को समझें, नहजत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझें। बस खुदा हमारी ये इबादत कबूल फरमाए, ये गम और आज़ादारी हमारी कबूल फरमाए। खुदा तौफीक दे कि हर पहलू से हम करबला को समझें। इंशाल्लाह खुदा ने आइंदा तौफीक दी तो अलग पहलुओं से हम करबला को समझने की कोशिश करेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मुहम्मद आल मुहम्मद। اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وحتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى